غزوہ احد کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ہم مختلف واقعات دیکھ رہے تھے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے کس طرح سے جذبات کی قربانی دی اور اپنی ذاتی خوشیاں، اپنے جذبات اللہ کے دین پر قربان کیے. پیسہ قربان کرنا بہت آسان ہوتا، مال دینا بھی آسان ہوتا، لیکن جس طرح حضرت حنزلہ نے اپنے جذبات قربان کیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ تیر انداز، یعنی جن کا ایک بڑا اہم کردار تھا، انہوں نے کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماح پر جن تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، انہوں نے جنگ کے آغاز میں بہت اہم کردار ادا کیا. مکی سرداروں میں سے خالد بن ولید جو تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کافی حملے ہو چکے تھے، لیکن تیر اندازوں نے خوب اچھی طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. شروع میں مسلمانوں کی یہ ساری کیفیت اتنی غالب رہی کہ کچھ ہی دیر کے بعد جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر پوری طرح میدان جنگ پہ اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا، اور مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیے، کفار مکہ بھی بہادر تھے، جذبات ان کے پاس بھی تھے، لیکن ایمان والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو اس کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے. بالآخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹے، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے بکھرنے لگے. گویا کہ 3,000 مشرقین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا کرنا ہے، اور مسلمان تھے ایمان اور یقین کے ساتھ، بہادری کی تصویر بنے بیٹھے، اس طرح تلواروں سے کھیل رہے تھے جیسے شاید کوئی بچہ کھلونوں سے کھیلے. قریش نے جب مسلمانوں کے حملوں سے خود کو بے بس پایا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، حوصلے ٹوٹ گئے، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آگے جائے اور اپنے گرے ہوئے جھنڈے کو اٹھائے. جھنڈا گرا تو سمجھیے کہ جنگ ہار گئے، بھاگنے لگے. ان کو یہ تھا کہ بھاگ جاتے ہیں یہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید کٹیں. ایسے وقت میں وہ اپنے باپ دادا کی وہ روایات بھی بھول گئے کہ دشمن سے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا. میدان جنگ میں مر جائیں گے لیکن پلٹیں گے نہیں. لیکن بہرحال جان سب کو پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی، اپنے وعدے پورے کیے کہ تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی مسلمانوں نے کہ وہ کیمپوں سے بھی پرے بھاگ گئے اور ان کو شکست ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، واللہ ہی میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ اور اس کی ساتھی عورتیں پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا کر بھاگ رہی ہیں. یعنی اب ان کو پتہ تھا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت برا بن عازب سے کہ جب مشرکوں سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں کہ ان کی پازیبیں تک دکھائی دے رہی ہیں. اور اس میں اسی بھگدڑ میں مسلمان مشرکوں پر اپنی تلواریں چلاتے رہے، مال ان کا سمیٹتے رہے. بالکل جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان جیت چکے ہیں. اتنے میں ایک ایسی غلطی ہوئی تیر اندازوں سے کہ جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا. ایک ایسا صفحہ ثبت ہو رہا تھا تاریخ کے اوراق پر کہ فتح بدر کے بعد اب اگلے ہی سال فتح احد شاید کفر کو دبا دیتی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو تھوڑا اور مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیتی سیشنز تھے یہ چھوٹے چھوٹے. مسلمانوں نے ایک غلطی کی تو اس سے سیکھا بھی بعد میں بہت کچھ، نقصان بہت ہوا. اللہ کے نبی شہادت سے بال بال بچے. مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جو بدر کے بعد طاری ہو چکی تھی وہ پیچھے چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ سارے احکامات جو تھے اس وقت ان کو بھول گئے وقتی طور پہ، جب دوسرے مسلمان والے غنیمت لوٹ رہے تھے. دنیا کا مال آتا ہے تو حب دنیا کچھ اس طرح غالب آتی ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے لیڈرز اور اپنے بڑوں کے سارے ہی مشورے اور ان کے آرڈرز بھول جاتا ہے. بعض کہتے ہیں غنیمت غنیمت کی آوازیں آنے لگیں، کوئی کہہ رہا تمہارے ساتھ ہی جیت گئے، اب کس چیز کا انتظار ہے. چنانچہ عبداللہ بن جبیر جو لیڈر تھے وہ ان کو یاد دلاتے رہے، لیکن کافی سارے لوگ جو تھے وہ ان کی بات کو سنے بغیر وہاں سے چلے گئے، مال غنیمت جمع کرنے لگے. 40 کے قریب لوگ جگہ چھوڑ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے. مسلمانوں کی پشت اب خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے. لیکن اب دیکھیے کہ کبھی کبھی تھوڑے سے جم جانے والے واقعی بہت بڑے نقصان سے پھر انسان کو بچا لیتے ہیں. اس طرح ڈٹے رہے کہ اب جان دیں گے تو دیں گے, پھر یہاں سے ہٹیں گے, اپنی مرضی سے یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. اسلامی لشکر جو ہے وہ مشرکین کے قابو میں آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت مضبوط سہارا بنے, اس جنگ میں انہوں نے کفر کو بہت فائدہ دیا. 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ درہ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے, چند ساتھی ہیں, تو پیچھے سے وہ مسلمانوں پر پڑے اور بلند نعرہ لگایا, اور جس سے مشرکین کو پتہ چل گیا کہ اب ہم دوبارہ ایک نئے سرے سے مسلمانوں پہ ٹوٹیں گے. قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت تھی, عمرہ بنت علقمہ, اس نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا جھنڈا بھی اٹھا لیا. بکھرا ہوا لشکر دوبارہ متحب ہوا اور ایک دوسرے کو واضح دے دے کے بلا رہے تھے کہ آؤ آج مسلمانوں کے خلاف جمع ہوتے ہیں, اور اب مسلمان گھر چکے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چکی کے دو پاٹوں کی طرح مسلمان آگے پیچھے سے اب دشمنوں کے ہاتھ میں تھے. ایسے وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام کیا تھا کہ آپ صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ساتھ وہاں کھڑے رہے. مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کا اس طرح سے دشمنوں کو کاٹنا, یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے. اتنے میں آپ کو اچانک خالد بن ولید دیکھے. اب آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے, یا تو ان 9 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر اپنی جان بچاتے اور اپنے لشکر کو جو اب ان کے قبضے میں آ رہا ہے ان کی قسمت پر چھوڑ دیتے, اور شاید کوئی عام انسان ہوتا تو یہی کرتا کہ بھائی ہم بچیں اب جو بھی ان کے ساتھ ہو, اور دوسری صورت یہ تھی کہ پھر اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کو بلائیں اور سب مل کر دوبارہ جہاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کے موقع پر جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ خود اپنی کہانی خود بتاتی ہے کہ اپنے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کی جان بچائی. اچھے لیڈر یہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو نہیں لے کے پھرتے, بلکہ ان کو عوام پیاری ہوتی ہے, ان کو رعایا پیاری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کو اپنے شخص سواروں کے ساتھ آتے دیکھا تو بلند آواز سے صحابہ کو پکارا, اللہ کے بندو, عباد اللہ, اینا, کہاں ہو, اللہ کے بندو ادھر آؤ. آپ کو پتہ تھا کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکوں تک بھی پہنچ جائے گی, اور یہی ہوا. یہ آواز سن کر مشرکین کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں موجود ہیں. اب ایک اور خطرہ تھا, اور وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا, کیونکہ لیڈر کو مار دینا باقی ساری فوج کو مارنے سے بھی بڑی فتح ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ایکسپوز ہوئی تو پھر اس وقت مسلمانوں کا ایک دستہ آپ کے پاس پہنچا اور باقی شخص سواروں نے تیزی سے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کیا. مسلمانوں میں انتشار پھیل چکا تھا, مسلمان گھیرے میں آ چکے تھے. ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا, جان کی پڑی تھی, اس وقت میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کی راہ سوچ رہے تھے. ان کو کچھ نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. کچھ تو بھاگ کر مدینہ میں جا گھسے, کچھ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گئے. ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکوں کے ساتھ مل گیا. دونوں گڈمٹ ہوئے, ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا. اس کے نتیجے میں بعض مسلمانوں کے ہاتھ دوسرے مسلمان مارے گئے. دیکھیے بھگدڑ اور ڈس آرگنائزیشن یا مس مینجمنٹ سے بہت نقصان ہوتا ہے. یہاں بھی یہی کچھ ہوتا دکھ رہا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ سے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست ہوئی, اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے. اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے جا کے گھت گئی. حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے. وہ بولے اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں, لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا, یہاں تک ان کو پھر مار ڈالا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ با خدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر رہی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مس مینجمنٹ کتنا نقصان دیتی ہے. انتشار, بد نظمی, کچھ لوگ حیران کھڑے ہیں, کچھ سٹ پٹائیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں کدھر جائیں. اتنے میں ایک پکار آتی ہے کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد قتل کر دیے گئے. اب اس جملے سے تو مسلمانوں کی رہی سے ہی ہمت ٹوٹ گئی, ہوش چلا گیا, حوصلے بھی ٹوٹے. بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا, کچھ تھک کے بیٹھ گئے, کچھ کہنے لگے کہ اب کیا فائدہ, اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے. کوئی کہنے لگا منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے مل جاتے ہیں اور جا کے ابو سفیان سے امان لیتے ہیں. یعنی یہ ساری پسپائی کی باتیں تھیں جو اس وقت مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نظر کا گزر ہوا, دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے. تو حضرت انس بن نظر بولے تو اب آپ پھر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ उठो और जिस चीज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान दी है तुम भी उस पर जान दे दो। ऐसे लोग जियाले होते हैं। जब सबकी हिम्मतें टूट जाए ना, तो एक आधा हिम्मत वाला बंदा दूसरों को भी बिखरने से बचा लेता है। इनकी इस बात से लोगों के अंदर जोश आया और कहने लगे कि अल्लाह, अगर इन लोगों ने इस वक्त कोई बुज़दिली दिखाई तो फिर मैं अपने आप को इनसे बरी करता हूँ, और जो मुशरिकों ने किया मैं इससे बेगुनाह हूँ, यानी बेजार हूँ, अपनी जान की बात है। ये बात इन्होंने कही और आगे जाके हज़रत साद बिन माज से मिले। पूछा, अबू उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, जन्नत की खुशबू का क्या कहना, एहसास मैं इस ओहद के पीछे से महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद और आगे बढ़े और मुशरिकीन से लड़ते हुए शहीद हो गए। सोचिए तो सही, ये कौन सी मोहब्बत है? पता है मौत के मुंह में जा रहे हैं फिर भी नहीं बचे। हम तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, हम कहते हैं नतीजा क्या होगा, मेरी इस कोशिश से जी कोई फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं तो फिर हम जाते ही नहीं, हम ये काम करते ही नहीं। नहीं, फ़ायदा उसको हो ना हो आपको हो जाएगा। इस्लाम को हमारी कोशिशों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अपने काम खुद कराएगा। हमारा काम क्या है कि हम अल्लाह के रास्ते में अपनी आखिरी कोशिश तक कर दें। सारे असबाब रख लीजिए, सारी बातें जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने दी हैं उसको आसान तरीके से निभाएं, उसके बाद नतायज अल्लाह पे। लेकिन अगर हमारी कमी से इस्लाम का नुकसान हुआ, हमारी किसी सुस्ती से या हमारी किसी गैर जिम्मेदारी से इस्लाम को नुकसान हुआ, तो चाहे इस्लाम फतेहमंद भी हो जाए, लेकिन कल क़यामत के दिन हम जवाबदेह ज़रूर होंगे। उनको जन्नत की खुशबू आई, गए और लड़ गए, और मैदान जंग में इतने ज़ख़म लगे कि उनकी बहन ने उनकी उंगलियों की पोरों से पहचाना। नेज़े, तलवार और तीर के तकरीबन 80 से ज़ायद ज़ख़म थे। हमें क्यों खुशबू नहीं आती जन्नत की? इसलिए कि हमारी जन्नत हमारे घर, हमारी जन्नत हमारी गाड़ियाँ, हमारी जन्नत हमारी शादियाँ, हमारी लाइफ, हमारा ज़िंदगी का सारा सामान। जिनकी दुनिया मुख्तसर होती है ना, उनको जन्नत करीब दिखती है, और जो दुनिया को इतना बड़ा हाल है तो उनको उस दुनिया के पीछे जन्नत छुप जाती है। अब देखिए, एक प्लेट छोटी सी आप अपने चेहरे से 1 फुट दूर रखें तो उस प्लेट के पीछे कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं आपको दिखेंगी कमरे में पड़ी हुई, लेकिन उस प्लेट को करीब करते हुए अपनी आंखों के बिल्कुल आगे रख लें, अब वो तकरीबन 6 इंच की प्लेट आपके एक बिग हॉल को छुपा लेगी। इस प्लेट को दुनिया बना लें, हॉल को आप आखिरत बना लें। जब दुनिया हमारे बहुत करीब हो जाती है तो वो छोटी होने के बावजूद बड़ी लगती है, और बड़ी आखिरत को अपने पीछे छुपा लेती है। अगर आज हम भी इस जन्नत के तालिब हैं तो इस दुनिया से कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब उनकी तरह जाएं। आज नबी, मुसाफिर, ट्रांसिट पैसेंजर, फिर इंशाल्लाह हमें भी वो जन्नत दिखेगी। फिर अल्लाह के रास्ते के काम करने आसान होंगे, और जब दुनिया के तकाजे इतने फैल जाए हमारे, तो फिर तो हम खुद बेचारे हैं, रोते बहुत हैं, दिल बड़ा चाहता है, कर क्यों नहीं पाते वजह नहीं समझ आती। और उसकी वजह यह कि हमारी दुनिया बहुत भरी हुई है, हम बहुत ज़्यादा इनके पीछे लगे रहते हैं। इसी तरह साबित बिन दाहदा ने अपनी कौम को पुकारा, लोगों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह तो ज़िंदा, वो तो नहीं मरता, तुम अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें फ़तह देगा। इस पर अंसार की एक जमात उठी और हज़रत साबित ने इनकी मदद से हज़रत खालिद के रिसाले पर हमला किया। लड़ते लड़ते हज़रत खालिद के हाथों नेज़े से शहीद हो गए, और उनके साथी भी जाम शहादत नोश पा गए। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे खालिद बिन वलीद ने बाद में इस्लाम के लिए भी कुर्बानियाँ दी। ऐसे मुखलसीन अल्लाह इस्लाम को दे, जियाले जिसके साथ लगते हैं उसको उरूज पे पहुँचा देते हैं। मुसलमानों के लिए ऐसा एक एक इंसान बड़ा कीमती है कि जो इस्लाम को फतह दे। हम सबको भी अपनी सलाहियतें पहचाननी चाहिए, क्या कर रही हूँ इसको ना देखिए, क्या कर सकती हूँ और नहीं कर रही इसको ढूंढने की ज़रूरत है। मेरी सलाहियतें किस लिए लग रही हैं? मेरी अपनी दुनिया के लिए ठीक है, जायज़ है, गुनाह के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस्लाम के लिए ऑनर की बात है। अपनी सलाहियतों को बाकी रखने का नुस्खा है कि अपनी सलाहियतों, अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने माल, अपने घर, अपनी औलादों को और अपने सब कुछ को अल्लाह के रास्ते में लगा दें, फिर अल्लाह का दीन इंशाअल्लाह ताला फैलता है और आपका वो सब कुछ आपको वापस मिल जाता है। एक एक सहाबी जो उस वक्त पे लड़ा, उसने हकीकत में अपनी जगह बना ली। इस तरीके से उस मौके पे उन्होंने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि जो तारीख याद रखेगी। एक महाजर सहाबी एक अंसारी सहाबी के पास से गुजरे, खून में लथपथ थे वो। महाजर ने कहा, भाई फलां, आपको मालूम हो चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। अंसारी ने कहा, अगर मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो तो अल्लाह का दीन पहुँचा चुके हैं, अब तुम्हारा काम है कि इस दीन की हिफाजत के लिए लड़ो। देखिए जब सारे हालात सही होते हैं ना उस वक़्त सबका मामला ठीक होता है। बिगड़े हुए हालात में लोग अमूमन हाँ में हाँ मिलाते हैं, खुद ना भी सोचे ना कोई दूसरा कोई बात के कहते हैं हाँ मेरा भी ये ख्याल है। चलो 1 से 2, 2 से 11 हो गए और सोच बिगड़ती गई। हालांकि असल बात यह है कि इंसान कोशिश करे कि अपना हिस्सा खैर के कामों में डाले। बुरे हालात में ज़्यादा अच्छा काम करना यही तो एक ऑनर है जो अल्लाह इन मोमिनों को देता है। और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने हौसला अफजा बातें की, इससे फिर इस्लामी फ़ौज का हौसला बुलंद हुआ, होश हवास ठिकाने आए। अब उन्होंने हथियार डालने या अब्दुल्ला बिन उबई की मदद से अमान लेने की जो बात थी उसको पीछे डाल दिया, बल्कि हथियार उठा ले और इस तरह महाजरीन के साथ फिर लड़े कि दोबारा मुसलमान जम गए। कोशिश ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की जो ख़बर है पहले उसको देखा जाए। पता चल गया कि ये ख़बर तो झूठ थी। अब इससे और कुव्वत मिली और हौसला बना और एक खून रेज जंग होते होते बची और मुसलमान ना तो फतह और ना शिकस्त से दोचार हुए। ना तो आप कहें कि ग़ज़वे उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई ना काफिरों को हुई। क्यों? शुरू में मुसलमानों को फतह मिली, बाद में हालात कुछ इस किस्म के बदले कि मुसलमानों को फतह तो ना हुई लेकिन जो शिकस्त हो सकती थी वो भी ना हुई। इन ग्रोहों में एक ग्रोह ऐसा था जिसको अल्लाह के नबी की बड़ी फिक्र लगी हुई थी। फिक्र हुआ है वो किधर हैं, पता चल गया जिंदा हैं तो अब किधर हैं उनको देखें। इनमें अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब मौजूद थे, ये सबसे आगे थे। जब अल्लाह के नबी की हिफाजत का मसला आया तो आपके दिफा के लिए खड़े हो गए। अब अल्लाह के नबी को बीच में लेकर दुश्मनों से मुकाबला करना था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निशाना बनाया जा रहा था। सिर्फ आपके साथ 9 लोग थे। जब आपने कहा लोगों मेरी तरफ आओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो मुशरिकों ने सुन लिया, पहचान लिया, क्योंकि वो मुसलमानों के ज़्यादा करीब थे। उन्होंने आप पर हमला किया, किसी मुसलमान की मदद से पहले अपना पूरा बोझ डाल दिया। इस मौके पे जो वाक़ियात पेश हुए सोने के बानी से लिखने के काबिल हैं। सही मुस्लिम में हज़रत अनस से आता है कि उहद के रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसार और 2 कुरैशी सहाबा के हमरा अकेले रह गए, अलग थलग। जब हमलावर आपके करीब पहुंच गए तो आपने फरमाया कौन है जो इनको हमसे रोके, उसके लिए जन्नत है, या फरमाया कि जन्नत में वो मेरा रफ़ीक होगा। एक अंसारी बड़े लड़ते लड़ते शहीद हो गए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, 7ों अंसारी जो थे शहीद हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कुरैशियों से कि हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी अंसार तो मर गए और महाजर जो थे वो कुछ तो तितर बितर हुए। इससे पता चलता है बाज़ पीछे से आने वाले लोग आगे निकल जाते हैं, कब? जब अगले हिम्मत हार दें। हालांकि देखिए पिछले लोग तो ज़्यादा तजुर्बेकार होते हैं ना। जैसे आप देखिए एक जड़ है तो जड़ से दरख्त बनेगा ना, तो वो ज़्यादा जल्दी फूटेगा, फिर उसी जड़ को आगे बढ़ाते जाएँ दरख्त बनेगा। लेकिन हर जगह सिर्फ आप जड़ें ही बनाते जाएँ बढ़ाते जाएँ, ज़रा सा वो पौधा बने तो फिर एक और जड़ लगा दें, सारे कच्चे रहेंगे ना। इसलिए इसमें अमल की बात है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने चुना हो उनको फिर हर दिन अपने आप को मजीद करना चाहिए, आगे और हिस्से डालने चाहिए और ज़्यादा उनको अपने आप को मजबूत रखना चाहिए ताकि वो अपने आप को दूसरों से और ज़्यादा फ़ायदा मंद कर सके। इसके बाद उमारा बिन यजीद जो लड़ते लड़ते शहीद हुए, ज़ख्मों से गिर के चूर पर हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 2 कुरैशी सहाबा रह गए। बुहारी और मुस्लिम में अबू उस्मान की रिवायत है कि जिन दिनों में आपके खिलाफ ये मारकाराइयाँ हुई इनमें एक लड़ाई में मैं और आपके साथ तलहा बिन उबैदुल्ला और साद बिन अबी वक्कास के सिवा कोई भी ना रह गया। ये लम्हा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक था, ख़तरनाक था। आप सोच कीजिए कि दुश्मन आपको अगर मार देता तो पीछे क्या रह जाता। मुसलमान तो अभी नए नए 2 साल तो हुए उनको आज़ाद हुए हुए, तो वो आने वाले वक्त के फिर तकाजे नहीं थे निभा सकते। लेकिन ऐसे मौके में फिर इनको भी अपना हिस्सा डालने का मौका मिला। मुशरिकीन के लिए इंतहाई सुनहरी मौका था और उन्होंने कमी भी नहीं की इससे फ़ायदा उठाने की। हमला भी किया लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उत्बा बिन अबी वक्कास ने आपको पत्थर मारा जिससे आप पहलू के बर गिर गए, आपका दायां निचला रुबाई दांत टूट गया। मुँह के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर नीचे के जो 2 दांत होते हैं ना उनको सुनाया कहते हैं, और इसके दाएं और बाएं नीचे ऊपर के एक एक दांत को रुबाई कहते हैं। कुचली के नोकीले दांत से ये पहले होते हैं। ये टूट गया था अल्लाह के नबी का। अल्लाह हू अकबर। फिर आपका निचला होंठ जख्मी हुआ عبداللہ بن شہاد زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اڑیل سوار تھا عبداللہ بن قمہ، اس نے لپک کر آپ کے کندھے پر سخت تلوار ماری۔ کیا آپ ایک مہینے سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، لیکن آپ کی دوہری زرہ نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ کے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی، اور اس کی وجہ سے ہوت کی دو کڑیاں چہرے کے اندر چلی گئیں۔ اس نے کہا، اسے لے، میں قمہ توڑنے والا کا بیٹا ہوں، توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چہرے سے خون صاف کیا اور کہا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ بخاری کی روایت میں آتا کہ آپ کا رباعی دان توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دان توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر سورۃ آل عمران کی آیت 128 نازل ہو گئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کبھی اس منظر کو اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیں جو میدان احد میں ہوگا، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محسوس کرتے ہیں تو ان کے جسم کے زخمی ہونے کا سوچ کے کیا دل زخمی نہیں ہو رہا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اپنے کسی پیارے کو تکلیف ہو، کسی پیارے کو چوٹ لگے، جیسے ماں اپنے بچے کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتی، جیسے ہم اپنے باپ بھائیوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ کیا اس قسم کی تکلیف نہیں دکھ رہی؟ اور ایسے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت ملنی ہے کہ نہیں۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور رسول چاہے؟ نہیں، لیس لک من الامر شیء، اللہ کے نبی آپ کا معاملہ میں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ الہادی اللہ، رہنما وہ ہے، اس کو پتہ ہے کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی۔ اس لیے آپ کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ جس سے یہ لگے کہ شاید اب اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہو گیا۔ ہم چار کام اللہ کے راستے کے کر لیں، دل چاہتا ہے کہ ساری عرش کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں، تقدیر کے سارے فیصلے ہم سے پوچھ کے ہوں، نہیں ہوگا۔ کچھ بھی کر لو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اللہ نہ چاہے، وہ کام نہیں ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتی نہیں، کیا نہیں جانتی کہ میرا کیا مقام ہے، اور یہ نہیں جانتی کہ میری مخالفت کا کیا نقصان ان کو بھگتنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا۔ آپ دیکھیے کتنا نرم دل کس کا ہوگا، ہم ہو تو کہیں پکڑو ان کو، اللہ مار ان کو، سزا دے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کا نبی دشمنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ ایسے نبی اپنے امتیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ کر کہاں خوش ہوں گے۔ کبھی ہم گناہ کرتے وقت سوچیں کہ اور تو چھوڑ دیجئے سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، آپ کیسے یہ برداشت کر سکیں گے کہ میرے امتی جہنم میں جائیں؟ بچہ کتنا ہی کیوں نہ دکھائے، پھر بھی ماں کا دل نہیں کرتا کہ یہ کسی تکلیف میں آئے، کسی مشکل میں آئے، تو اللہ کی ذات کیسے یہ چاہ سکتی ہے؟ اسی طرح ایک روایت میں تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور ہدایت بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ظرف دے کہ ہم دشمنوں کے لیے ہدایت مانگیں اور ان کے گناہوں کی معافی مانگے۔ مشرقین آپ کو مارنا چاہتے تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، ان لوگوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ مشرقوں کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ دونوں ماہر تیر انداز تھے، تیر مار مار کر مشرقین جنہوں نے حملہ کیا ان کو اللہ کے نبی سے دور رکھا۔ سعد بن ابی وقاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے، فرمایا، چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے سوا اور کسی کے لیے تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں یہ بات نہیں گئی۔ اور حضرت طلحہ، ان کے کارنامے نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ نے مشرقین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انصار کی ذرا سی نفری کے باوجود وہاں کھڑے تھے۔ جب مشرکوں نے اللہ کے نبی کو پکڑا تو آپ نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں۔ اس کے بعد حضرت جابر نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی تفصیل بیان کی۔ सब शहीद हो गए। तलहा बढ़े, 11 लोगों के बराबर सिर्फ तलहा ने लड़ाई की। इनके हाथ पर तलवार की एक ऐसी ज़र्ब लगी जिससे उंगलियां कट गईं। इस पर इनके मुंह से आवाज़ निकली, हिस। आपने फरमाया, अगर तुम हिस की जगह बिस्मिल्लाह कहते तो फरिश्ते तुमको उठा लेते और लोग देखते। अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ़ों पे भी हिस भी नहीं कहना। हम क्या क्या दुखड़े रोते रहते हैं सारा दिन, थक गए, हाय ये हुआ, चाय नहीं पी, खाए नहीं, खाते पीते रहते हैं साथ, आराम भी करते हैं, फिर भी कहते हैं सुबह से आराम नहीं मिला, सुबह से ये नहीं किया, वो नहीं किया। अल्लाह हमें हिदायत दे दे। और इसके बाद अल्लाह ने मशरिकों को बल डा दिया। एक रिवायत में आता है कि उहद के रोज़ 39 शब 45 39 जा 35 ज़ख़म आए और उनकी शहादत की उंगलियां शल हो गईं। बीच की जो उंगली होती है ना, मिडल उंगली, और शहादत की उंगलियां शल हुई। हमें ज़रा चोट पड़ जाए उसके बाद हम लगे रहेंगे, हम कहेंगे हाय मैं मर गई, ये कांटा चुभ गया। हम तो इतने नाजुक अंदाम हैं, हम तो ख़ुद को पालने वाले लोग हैं। इमाम बुखारी की रिवायत है क़ैस बिन हाजिम से कि मैंने तलहा का वो हाथ देखा जो शल था, और इससे उस दिन उन्होंने अल्लाह के नबी को बचाया। अगर आप ये सारे किस्से सुनना चाहें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामतें एक बुक शुरू की हुई है, टॉपिक उसका रिकॉर्ड हो चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा। इसी तरह रहमतुल्लिल आलमीन के हकूक़ के नाम पे एक टॉपिक चल रहा है, आज ही मैंने सुबह उसमें ये सारे वाक़या डिटेल से सुनाए हैं कि कैसे दिफा करते करते लोगों ने अपनी जानों पर ज़ख़म खाए, जाने दी। सुन के देखिए, शर्म आएगी कि आज हम अल्लाह के नबी के दिए हुए दीन का कहाँ तक दिफा कर रहे हैं। वो तो नबी की ज़ात को करते थे, हम तो उनके दीन का भी दिफा नहीं कर पाते। तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने इनके बारे में फ़रमाया कि जो ज़मीन पे किसी चलते फिरते शहीद को देखना चाहे वो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर जब जंग उहद का तस्करा फरमाते, कहते ये तो सारी की सारी जंग तलहा के लिए थी, यानी हीरो थे वो, मैन ऑफ द डे थे, कि उन्होंने अल्लाह के नबी का तहफ़्फ़ुज़ किया। क्योंकि लीडर का तहफ़्फ़ुज़ मिशन का तहफ़्फ़ुज़ होता है बाज़ूकात, और जबकि तहरीक अपने आगाज़ में हो, बिल्कुल इब्तदाई साल चल रहे थे मदनी दौर के। हज़रत अबू बकर ने इनके बारे में कहा, ए तलहा बिन उबैदुल्लाह, तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गईं और तुमने अपने यहाँ हूरुल ऐन का ठिकाना बना लिया। सबकी कोशिश अपनी जगह, लेकिन मदद अल्लाह की तरफ से, वमन नसर इल्ला इल्लल्लाह, इसलिए अल्लाह ने इस मौके पर गैब से अपनी मदद फरमाई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है हज़रत साद से कि मैंने रसूलुल्लाह को उहद के रोज़ देखा कि आपके साथ दो आदमी थे सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ये दोनों आपकी तरफ से इंतहाई ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे थे, मैंने इससे पहले और इसके बाद इन दोनों को कभी नहीं देखा। एक रिवायत में आता है ये जिब्राइल और मीकाइल थे। जहाँ इंसान हार जाएंगे अल्लाह फरिश्तों को बुला लेगा, क्योंकि मदद तो उसकी है। इंसानों के दिल में भी अल्लाह ही प्यार डालता है। यकीन करें कि इस इंसान की कोई ताकत नहीं है, हम इंसान सिर्फ सबब और ज़रिया बनते हैं, लेकिन हमें जो कि इंसान दिखते हैं ना, तो हम उन्हीं पर रीझने लगते हैं। अल्लाह के ये नबी जो थे वो इंसानों पे भी नज़र रखते थे, लेकिन असल मदद अल्लाह की तरफ से थी। और ये सब कुछ इतना अचानक और तेज़ी से हुआ कि समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। नबी सल्लम ने जिन सहाबा को बिल्कुल लड़ाई के अगली सफ़ों में रखा था, जब सूरत हाल बदली और अल्लाह के नबी सल्लम की आवाज़ सुनी तो आपकी तरफ आए कि कोई आपको हाथ से ना आए, लेकिन ये लोग जब पहुँचे तो अल्लाह के नबी ज़ख्मी हो चुके थे, 6 अंसारी शहीद हुए, 7वें ज़ख्मी होकर गिर चुके थे। हज़रत साद और हज़रत तलहा मुदाफ़त कर रहे थे, लोगों ने अपने जिस्म और हथियारों से अल्लाह के नबी के गिर्द एक बाड़ खड़ी कर रखी थी, दुश्मनों के हमले आपसे रोक रहे थे, इंतहाई बहादुरी से लड़े, और लड़ाई की सबसे जब आप पलट कर आने वाले लोगों में सबसे पहले जो थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उहद के दिन सारे लोग अल्लाह के नबी से पलट गए, यानी हिफाजत करने वालों के सिवा तमाम सहाबा आपको क़यामगाह में छोड़कर लड़ाई के लिए अगली सफ़ों में चले गए। फिर घेराव के हादसे के बाद मैं पहला शख्स था जो नबी के पास पलट आया, और देखा तो आपके सामने एक आदमी था जो आपकी तरफ से लड़ रहा था और आपको बचा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, तुम तलहा हो ना, तुम पर मेरे माँ बाप फिदाओं, तुम तलहा हो, तुम पर मेरे माँ बाप फिदाओं। देखिए अल्लाह के नबी का दिफा इनको कितना प्यारा था कि वो अल्लाह के नबी का दिफा कर रहे हैं और ये अपने माँ बाप की बात कर रहे हैं। और ये अरब में मुहावरा बड़ा आम था कि तुम पर मेरे माँ बाप फिदाओं। इतने में अबू उबैदा बिन जराह मेरे पास आ गए। वो इस तरह दौड़ रहे थे गोया चिड़िया उड़ रही हो, यानी इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे, यहाँ तक कि मुझसे आ मिले। अब हम दोनों नबी की तरफ दौड़े, देखा तो आपके आगे तलहा बिछे पड़े हैं। आपने फरमा अपने भाई को संभाल लो, इसने जन्नत वाजिब कर ली। हज़रत अबू बकर कहते, जब हम पहुँचे तो अल्लाह के नबी का चेहरा मुबारक हो चुका था और हूद की दो कड़ियाँ आँख के नीचे आप रुखसार में धंस चुकी थी। मैंने इन्हें निकालना चाहा तो अबू बैदा ने कहा, खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे निकालने दीजिए। देखिए ये क्या काम था, कोई मज़े का काम था, लेकिन ये चाहते थे कि हम कुछ करें, कुर्बानियाँ दें। और इसके बाद उन्होंने मुँह से एक कड़ी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता निकालनी शुरू की ताकि रसूलुल्लाह को अजियत ना पहुँचे, और बिलाखिर एक कड़ी अपने मुँह से खींच कर निकाल ली। लेकिन इस कोशिश में इनका निचला दांत गिर गया। अब दूसरी मैंने खींचनी चाही तो अबू उबैदुल्ला ने कहा, खुदा का वास्ता देता हूँ, मुझे खींचने दीजिए। इसके बाद दूसरी भी और आहिस्ता आहिस्ता खींची, लेकिन इनका दूसरा निचला दांत भी गिर गया। ये बताइए, इनको दर्द नहीं होती थी? एक हो गई, अब के बस हो गया ना काम, और इतनी और क्या करें हम? हौसले नहीं टूटते, दांत टूटा हौसला नहीं टूटा, काम नहीं छोड़ते थे, रास्ते नहीं उनके टूटते थे। हाय क्या मुश्किल है, अब कर तो लिया जो करना था, वो और हम क्या करें। अल्लाह अकबर। आज इन सारे वाक़यात को पढ़ते हुए हम सब अपना मुहासबा करें। अल्लाह के दीन के रास्ते में सिर्फ एक वक्त की प्यास, भूख, थकन, गाड़ी ना आए, चलना पड़े, बस पे जाना पड़े, फिर पूछते हैं खुद से कि बताओ भाई क्या मज़े के दिन है, क्या इससे फ़ायदा होता है। अल्लाह अकबर। आपने कहा अपने भाई तलहा को संभालो, इससे जन्नत वाजिब कर ली। अबू बकर कहते हैं, अब हम तलहा की तरफ मुतवज्जे हुए, इनको संभाला। इनको 10 से ज़्यादा ज़ख़म आ चुके थे। यहाँ से आप देखिए कि तलहा ने 10 चोटें खाई लेकिन वहाँ से नहीं हटे, और अल्लाह के नबी के गिर्द फिर और साथी भी जमा हो गए। अबू दुजाना, मुस्सब बिन उमैर, अली बिन अबी तालिब, सहल बिन हुनैफ, मालिक बिन सनान, उम्मे उमारा, नुसैबा, कतादा बिन नुमान, उमर बिन ख़त्ताब, खातिब बिन अबी बलता और अबू तलहा जैसे सहाबा के नाम आते हैं। इधर मुशरिकीन का दबाव बढ़ता जा रहा था, हमले से हमला, दबाव बढ़ा, अल्लाह के नबी एक घड़ी में चले गए, जिन्हें अबू आमिर फासिक ने इस किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था। उसके नतीजे में आपका घुटना भी मोच खा गया। हज़रत अली ने आपका हाथ थामा, तलहा बिन उबैदुल्ला जो खुद ज़ख्मों से चूर थे आपको अपनी आगोश में लिया, तब कहीं जाके आप खड़े हुए। नाफे कहते हैं, मैंने एक महाजर सहाबी को सुना, फरमा रहे थे, मैं जंगे उहद में हाज़िर था, मैंने देखा कि हर जानिब से रसूलुल्लाह पर तीर बरस रहे हैं और आप तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आपसे फेर दिए जाते हैं, यानी आगे घेरा डाले हुए सहाबा इन्हें रोक लेते हैं। और मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन शहाब जोहरी कह रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इतना गुस्सा था उसको, अब या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। हालांकि रसूलुल्लाह इसके करीब थे, आपके साथ कोई भी ना था, फिर वो आपसे आगे निकल गया। इस पर सुफवान ने इसे मलामत की, जवाब में इसने कहा, वल्ला ही मैंने उसे देखा ही नहीं, खुदा की कसम वो हमसे महफूज कर दिया गया है। इसके बाद हम चार आदमी यह तोहफे मांग करके निकले कि इन्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन अब इन तक पहुंच ना सके। इस तरह से भी देखिए कि अल्लाह ताला मदद करता था अपने नबी की, कि एक दुश्मन पास खड़ा होता था उसको पता ही नहीं चलता था। ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ और ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जिनको तारीख याद रखती है। अबू तलहा ने अपने आप को अल्लाह के नबी के सामने कैसे ढाल बना लिया, अपना सीना आपके सामने कर देते ताकि दुश्मनों के तीर आपके पर लगने की बजाय उन पर लग जाए। हज़रत अनस कहते, उहद के रोज़ आम लोग शिकस्त खाकर रसूलुल्लाह के पास आने की बजाय इधर उधर भाग गए, और अबू तलहा आपके आगे एक ढाल बन गए। अच्छे तीर अंदाज थे, खींच कर तीर चलाते, दो दो तीन तीन कमानें तोड़ डाली। अल्लाह के नबी के पास से जो शख्स तीर लेके जाता आप कहते हैं अबू तलहा के लिए बखेर दो, और अल्लाह के नबी कौम की तरफ सर उठाकर देखते तो अबू तलहा कहते, अल्लाह के नबी आप सर ना उठाएं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कहीं आपको कौम का कोई तीर ना लग जाए, मेरा सीना आपके आगे है। सुबहान अल्लाह, इतनी मोहब्बत जैसे सगे बच्चों से होती है ना, सहाबा को इतनी मोहब्बत अपने नबी से थी। हज़रत अनस कहते कि अबू तलहा अपना और नबी का एक ही ढाल से बचाव कर रहे थे, और अबू तलहा बहुत अच्छे तीरंदाज थे। जब वो तीर चलाते तो अल्लाह के नबी गर्दन उठाकर देखते कि इनका तीर कहाँ गया है। आज यहाँ बैठ के करनी बातें आसान है, मैदान जंग में निकले तो बात हो, हम तो इस खौफ से कि कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे इस्लाम की वजह से हम अपने हाल हुलिये बदल लेते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि अबू तलहा अपना और नबी का ही की ढाल से बताव करते थे। अबू दुजाना कहते हैं कि अल्लाह के नबी के आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आपके लिए ढाल बना दिया, उन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वो हिलते ना थे। क्या थे ये, पेन प्रूफ थे ये लोग? तकलीफ़ नहीं होती होगी इनको, दुख नहीं होता होगा, सब कुछ होता था लेकिन हौसले बुलंद थे, मकसद बड़ा था। देखिए आप इसको इस मिसाल से समझिए कि जब आप किचन में खाना पका रहे हैं ना और आपको पता है कि शाम को 10-20 लोगों ने आना है, कट भी लगते हैं, खून भी निकलता है, आपको होश ही नहीं है, कभी उधर पानी लगा, पट्टी बांध, कुछ नहीं, काम कर। फिर जब रात को फारिग होकर बैठते हैं तो फिर गिनते हैं, हाय यहाँ भी दर्द है, यहाँ चोट लगी थी, ये पाँव मुड़ा था। क्या वजह थी कि उस वक़्त मकसद था, धुन थी, खाना पकाना है। तो जिसको चंद लोगों को खाना खिलाने की धुन हो, उसको अपनी जान इस तरह लगे, तो जिसके ज़िम्मे इंसानियत को अल्लाह से जोड़ने की ज़िम्मेदारी हो, फिर उसका हाल क्या होगा, इसको हम खुद सोच सकते हैं। ये वजह थी कि उनको दर्द महसूस नहीं होता था, ये तो नहीं कि इंसान नहीं थे या उनके जिस्म के फौलाद के बने हुए थे, नहीं, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये सब क्यों था? क्योंकि उनके अज़म बहुत बुलंद थे, मिशन था। आज आप भी मिशन से प्यार करके देखिए, आपको भूख, प्यास, थकन, गर्मी, सर्दी कुछ नहीं लगेगी, होश नहीं आएगी आपको इन चीज़ों की। इस तरह के लोग तारीख लिखते हैं, वो तारीख साज थे, हम खुद साज हो गए, हम खुद को बना रहे हैं और वो तारीख बना के चले गए। हातिब बिन अबी बलता ने उत्बा बिन अबी वक्कास का पीछा किया, इसने अल्लाह के नबी का दांत मुबारक शहीद किया था और उसे इस ज़ोर की तलवार मारी कि इसका सर छटक गया, फिर इसके घोड़े और तलवार पर कब्ज़ा कर लिया। साद बिन अबी वक्कास बहुत ज़्यादा ख्वाहान थे अपने इस भाई उत्बा को कत्ल करें, मगर कामयाब ना हो सके, और यह सआदत हज़रत खातिब की किस्मत में थी। किस बात की ख्वाहिश थी कि काफिर भाई को मैं मारूं? देखिए खून के भी रिश्ते, जज्बात भी नहीं थे क्या इनमें? ऐसी नहीं कैफियत सामने आती कि जैसे कोई मिट्टी का पुतला, मशीन, रोबोट, सोच समझ कोई नहीं, जो सामने आया उसको मार दिया, उससे बात कर ली, जो अच्छा लगा उससे प्यार किया। ये होती है जज्बात की कुर्बानी, ये होती है अलहब फिल्ला वल बुख्स फिल्ला। हज़रत सहल बिन खुनैफ बहुत अच्छे तीरंदाज थे, इन्होंने अल्लाह के नबी से मौत पर बैत की कि मरते दम तक लड़ता रहूँगा, और इसके बाद मुशरिकीन को ज़ोर व शोर से हटाने लगे अल्लाह के नबी से। खुद अल्लाह के नबी भी तीर चला रहे थे। हज़रत कतादा बिन नौमान की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने अपनी कमान से इतने तीर चलाए कि इसका किनारा टूट गया, फिर इस कमान को हज़रत कतादा बिन नौमान ने ले लिया और वह इन्हीं के पास रही। इस रोज़ ये वाक़या भी हुआ कि हज़रत कतादा की आँख चोट खाकर चेहरे पर ढलक आई। अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए, आंख बाहर आ गई। कोई वहाँ हॉस्पिटल थोड़ी थे, कोई एम्बुलेंसेस थोड़ी खड़ी रहती थी, कोई लाइफ फ्लाइट्स नहीं थी उनके पास, जान हथेली पर रख के जाते थे, किसी को चोटें पड़ी, किसी का हाथ अंदर आ रहा है, अपने हाथ को काट दिया, एक साहबी ने आगे पढ़ेंगे कि यह हाथ मुझे सता रहा है अल्लाह के काम करने से, इसको हटा दो, पीछे कर दो। जब इनकी आँख निकली, अल्लाह के नबी ने उसे अपने हाथ से पपोटे के अंदर दाखिल कर दिया और कहते कि इसके बाद इनकी दोनों आंखों में यही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और उसकी बिनाई ज़्यादा तेज थी। नबी का हाथ लगा, हाथ की आँख क्यों ना खूबसूरत होती। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लड़ते लड़ते मुंह पर चोट खाई, सामने का दांत टूट गया, 20 या उससे ज़्यादा ज़ख्म आए, बाज ज़ख्म पाँव में लगे और वो लंगड़े हो गए। ये कटे फटे लोग अल्लाह के काम करने वाले, हम बैठ के नाते पढ़ते हैं, हम बैठ के बातें करते हैं और खाना खाते हैं और बिखर जाते हैं। अबू सईद खुदरी के वालिद मालिक बिन सनान ने रसूलुल्लाह के चेहरे से खून चूसा और उसको साफ़ किया। आपने फरमाया इसे थूक दो, उन्होंने कहा वल्लाही मैं तो इसको हरगिज ना थूकूंगा। इसके बाद पलट कर लड़ने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो वो इन्हें देखे। इसके बाद के वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। यानी मेरे जिस्म में अल्लाह के नबी का खून मिल गया तो मैं क्यों पीछे पलटूं? इसी तरह उम्मे अमारा सहाबिया थी, इन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया। आज सुबह भी इनका वाकया बड़ी डिटेल से सुनाया कि कैसे ये उस वक्त काम में आई जब सब बिखरे हुए थे और लड़ती हुई इब्ने कुमा के पास आ गई उसने इनके कंधे पर तलवार मारी, गहरा ज़ख्म हुआ। इन्होंने भी इब्ने कमा को फिर अपनी तलवार से कई ज़रबे लगाई, लेकिन चूंकि उसने दो जरहें पहनी हुई थी बच गया। हज़रत उम्मे उमारा ने लड़ते भिड़ते 12 ज़ख्म खाए। कितनी कहानियाँ सुने और कितना अपना मुहासबा करें, इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं। हज़रत मुसअब बिन उमैर इंतहाई बेदर्दी से लड़े, ये अल्लाह के नबी से इब्ने मक्कमा और इसके साथियों के हमलों का दिफा कर रहे थे, इन्हीं के हाथ में इस्लामी लश्कर का झंडा भी था। उन्होंने इनके दाएं हाथ पर इस ज़ोर की तलवार मारी कि हाथ कट गया। इसके बाद बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिया, कुफार के मुकाबले में डटे रहे, फिर बाया हाथ भी काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर इसे सीने और गर्दन के सहारे लहराए रखा और इसी हालत में जामे शहादत नोश फरमाया। इनका कातिल इब्ने कुमा था, वो समझ रहा था कि ये मोहम्मद हैं, क्योंकि मुसअब बिन उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। सुना जो हज़रत मुसअब को शहीद करके मुशरिकों की तरफ गया और चिल्लाया, ऐलान किया, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना शौक़ था उनको कि आज हमारे हाथ से ये शख्स जाए दुनिया से। ये ख़बर सुनी तो दोबारा मुसलमानों में खुलबली मच गई, मुशरिकीन भी ऐसे हो गए। और ये वो वक्त था कि अल्लाह के नबी बिल्कुल अलग थे, अब तो सहाबा के हौसले टूटे, अज़म अज़ाइम सर्द पड़ गए, सफ़ों में बेतरतीबी फैल गई। और आपकी ये शहादत की ख़बर इस लिहाज से अच्छी हुई कि इसके बाद मुशरिकीन के पुरजोश हमलों में कमी आ गई। उन्होंने कहा चलो मैदान तो हमने मार ही लिया, क्योंकि उनको लगा कि हमने अपना मकसद पूरा किया। और अब बहुत सारे मुशरिकीन ने हमला बंद करके मुसलमान शहदा की लाशों का मुसला शुरू कर दिया। और ग्रज था ना दिल में, कहा चलो जी अब इनको मारते हैं। मुसलमान ठंडे हुए थे, दुश्मन भी ठंडे हो गए। उन्होंने कहा बस जीत गए, चलो अब क्या करें, लाओ इनको काटते हैं। और मुसला आपको पता है क्या होता है, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने मुसलमानों के। और इस तरीके से मुसलमानों को वो गाजर मूली की तरह काटते थे। बाद लोग हार बना के उनकी चीज़ों को गले में डालते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर बाद में झूठ साबित हुई, क्योंकि वो तो हज़रत मुसअब बिन उमैर थे। इसके बाद अल्लाह के नबी ने झंडा हज़रत अली को दिया, उन्होंने जमकर लड़ाई की। वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने भी बहुत जुरत दिखाई और बिलाखिर ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों की सफ़ों से निकल कर आगे चले गए और सहाबा कराम में आ गए। हज़रत काब बिन मालिक ने सबसे पहले आपको पहचाना, खुशी से चीख उठे, मुसलमानों खुश हो जाओ, ये हैं अल्लाह के रसूल। आपने इरशाद फरमाया खामोश हो जाओ, क्योंकि मुशरिकों को ना पता चले कि आप अभी इधर हैं। मगर इनकी आवाज़ मुसलमानों के कानों तक पहुँच चुकी थी और अब मुसलमान आपकी पनाह में आना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो 9 थे तो अब 30 लोग जमा हो गए। इतनी तादाद जब जमा हुई कि हमला हो सकता था तो अल्लाह के नबी ने पहाड़ की घाटी यानी कैंप की तरफ हटना शुरू किया। मगर चूंकि इस वापसी के मानी ये थे कि मुशरिकीन ने मुसलमानों को अपने हिसार में लेने की जो कार्रवाई की थी उसका कोई नतीजा ना निकले, इसलिए मुशरिकों ने इस वापसी को नाकाम बनाने के लिए हमले जारी रखे। मगर आपने इनका वार पीछे किया, रास्ता बनाया और इस तरीके से मुसलमान जो थे वो पीछे से पीछे होते गए। एक बहुत ही ऊंचा लम्बा नौजवान था, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा। ये कहते हुए रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ा कि या तो मैं रहूँगा या वो रहेंगे। अल्लाह के नबी भी उनसे मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन मुकाबले की नौबत नहीं आई क्योंकि इसका घोड़ा एक गड्ढे में गिर गया। और इतने में हारिस बिन समा ने इसके पास पहुँच कर ललकारा और इसके पाँव पर इस ज़ोर की तलवार मारी कि वहीं बैठ गया और मर गया, यानी उसका काम ख़त्म हुआ। उन्होंने उसका हथियार लिया और अल्लाह के नबी के पास आए। इतने में मक्की फ़ौज के एक दूसरे सवार अब्दुल्ला बिन जाबिर ने पलटकर हज़रत हारिस पर हमला किया और इनके कंधे पर तलवार मारकर ज़ख्मी किया, लेकिन मुसलमानों ने लपक कर उनको उठाया। इसी तरह वो दुजाना थे इन ख़तरों में खेलने वाले, आज सुर्ख पट्टी बांधी हुई थी, अब्दुल्ला बिन जाबिर पर टूट पड़े और उसे ऐसी तलवार मारी कि उसका सर उड़ गया। कितने हीरो हैं मुसलमानों के पास, लोगों के पास तो कोई एक आधा होता है, मुसलमानों के पास तो बहुत ही सारे हैं। और आप देखिए एक तरफ जंग लगी हुई है और उधर से मुसलमानों को नींद आ रही है, छपकियाँ आ रही हैं, जिसको आप कह लें कि अल्लाह ताला उनको सुकून दे रहा है, इत्मीनान दे रहा है। अबू तलहा कहते हैं मैं भी उन लोगों में से था जिन पर ओहद के दिन नींद छा रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिर गई, हालत ये थी कि वो गिरती थी और मैं पकड़ता था, फिर गिरती थी और मैं फिर पकड़ता था। ये है बंदा मोमिन की कहानी। बाहर तलवारें चलती हैं, दिल में सुकून और इत्मीनान होता है। ये भी ज़हन में रखिएगा। ईमान की अलामत है बड़े से बड़ा सदमा, बड़े से बड़ा गम आप पे टूट पड़े। बाहर बहुत कुछ होगा, लोग कहेंगे हाय बेचारा और बेचारी, लेकिन आपके दिल में ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तखाफ़ु वला तहज़नु वाली कैफियत होगी। मुश्किलों में अल्लाह आपको संभालता है। आप अपने ईमान का जायज़ा लेना हो चाहे ना, कितना ईमान है, तो मुश्किल हालत में, प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में अपने दिल की कैफियत देखें। बाहर इंसान हीलो हुज्जत करता है, कोशिश करता है, लेकिन दिल बड़ा मुतमईन होता है। और इस तरह से मुसलमान इस मुश्किल में अल्लाह की मदद से बच गए। हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े शाहसवार भी थे और जंगजू भी थे, लेकिन अल्लाह के नबी की प्लानिंग उनसे भी आगे गई। एक शख्स कत्ल हुआ था इस जंग में अल्लाह के नबी के हाथों से, और वह उबई बिन खल्फ था। हुआ कुछ इस तरह से कि जब अल्लाह के नबी घाटी में वापस आ गए, तो उबई बिन खल्फ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो मैं रहूँगा या वो। ये जुमला क्यों बोल रहे हैं कुछ लोग? क्या ले गए थे अल्लाह के नबी इनका? लेकिन यहाँ से देखिए कि कुफर को इस्लाम से कितना बैर होता है। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम में से कोई इस पर हमला करे? आपने कहा इसको आने दो। करीब आया तो अल्लाह के नबी ने हारिस बिन समा से एक छोटा सा नेज़ा लिया और लेने के बाद झटका दिया, तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ के जैसे ऊँट अपने बदन को झटका देता है और मक्खियाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद आप उसके सामने आ गए। आपकी खुद और ज़िरा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई दी, यानी आपने देखा कि उसने खुद भी पहननी है, ज़िरा भी पहननी भी है, लेकिन थोड़ी सी जगह से स्किन दिख रही है। बस आपने उसी का निशाना लिया, नेज़ा मारा, और वो निशाना उस दिख बिल्कुल ठीक गया। अपने घोड़े से लुढ़का गिरा, कुरैश के पास गया। गर्दन में कोई बहुत बड़ी खराश नहीं थी, खून बंद था और बहता नहीं था। कहने लगा, मुझे वल्लाही मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। लोग कहेंगे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने दिल छोड़ दिया है, कोई ख़ास चोट नहीं लगी। इसने कहा, वो मक्के में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, इसलिए खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक देता तो भी मेरी जान चली जाती। और वाकई वो शख्स मक्का पहुँचते हुए सर्फ नाम के मुकाम पर पहुँच के मर गया। इनको भी यकीन था कि अल्लाह के नबी कह देंगे ना कि तुम मर जाओगे तो मर जाएंगे। दुश्मनों के अल्लाह के नबी की बातों पर, आपके वादों पर इतना यकीन था, आज मुसलमानों को क्यों नहीं? हमें जब उस नबी से पता चलता है कि तुम अगर अल्लाह के बनोगे, अल्लाह तुम्हारा बनेगा, तो हम उस पर एतबार क्यों नहीं करते? अबुल अस्वद कहते हैं कि ये बैल की तरह आवाज़ निकालता था और कहता था, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो तकलीफ़ मुझे है, अगर वो ज़िल मजाज के सारे बाशिंदों को होती तो सब के सब मर जाते। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत तलहा को एक सआदत नसीब हुई, और वो ये थी कि अल्लाह के नबी को उठाते हैं पहाड़ की तरफ। नबी सल्लम की वापसी के दौरान एक चट्टान आ गई, आपने उस पर चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ ना सके, क्योंकि एक तो बदन भारी हो चुका था, दूसरे आपने दोहरी ज़िरह पहन रखी थी, फिर आपको सख्त चोटें भी आईं। इसलिए तलहा बिन उबैदुल्ला नीचे बैठे और आपको कंधों पर उठा लिया। खड़े हो गए आप, चट्टान तक पहुँचे। आपने कहा, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। कुछ करने वालों को खुशखबरियाँ मिलती हैं, सिर्फ बातें करने वालों को नहीं। इसी तरह मुशरिकीन का एक आखिरी हमला हुआ, और वो कब? जब नबी सल्लम घाटी के अंदर पहुँच गए, तो मुशरिकीन ने एक कोशिश की। नबी सल्लम अंदर थे, अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद की क़्यादत में मुशरिकीन का एक दस्ता ऊपर चढ़ाया। फिर अल्लाह के नबी ने उस वक़्त दुआ की, अल्लाह ये हमसे ऊपर ना जाने पाएँ। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और महाजरीन की एक जमात ने लड़कर इनको पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। मुशरिकीन पहाड़ पर चढ़ आए तो अल्लाह के नबी ने साथ से कहा, इनके हौसले पस्त करो, इनको पीछे धकेलो। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं तन्हा इनके हौसले कैसे पस्त करूं? इस पर तीन बार आपने यही बात दोहराई। बिलाहिर हज़रत ज़ाद ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक शख्स को मारा, वो तो वहीं ढेर हुआ। हज़रत ज़ाद कहते, मैंने फिर वही तीर लिया, इसे पहचानता था, और इससे दूसरे को मारा तो वो भी उसी से मारा गया। इसके बाद फिर तीर लिए, इसे पहचानता था, और इससे एक तीसरे को मारा, और इसी तरह एक तीर से तीनों मुशरिक ख़त्म हो गए। बस सब मुशरिकीन पीछे हुए। मैंने कहा, ये मुबारक तीर है, फिर मैंने इसे अपने तरकश में रख लिया, और ये तीर ज़िंदगी भर हज़रत साद के पास रहा, और उनके बाद उनकी औलाद के पास। अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता था उनको कि मदद अल्लाह की तरफ से। तीर ने क्या करना है, उसमें कौन सी ताकत है? असल ताकत तो अल्लाह की तरफ से होती है, जो लोगों को ईमान की वजह से मिलती है। याद रखिए, जितना आपके अंदर ईमान ज़्यादा होगा ना, उतनी आपके साथ स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत होंगी। एक और बात भी समझ लीजिए, जो चीज़ आपको नामुमकिन लगे अल्लाह आपके लिए मुमकिन कर देगा। और अगर आपने अल्लाह पे नज़र रखी तो इंशाल्लाह नामुमकिनात ही आपके लिए मुमकिन बनती जाएंगी। इसके बाद शुहदा का मसला होने लगा। कफ़ार को इसके बाद कोई हमला करने की जुरत नहीं हुई। उनको यकीन था अल्लाह के नबी फौत हो चुके हैं। वापस जाने की तैयारी करने लगे और उनको लगा कि अब जंग ख़त्म हुई। कुछ मुशरिक मर्द और औरतें मुसलमान शहदा का मसला करने लगे। अल्लाह अकबर, शहीदों की शर्मगाहें, उनके कान नाक काटे गए, पेट चीरे गए। हिंद बिन उतबा ने हज़रत हमजा का कलेजा चाक कर दिया और मुंह में डालकर चबाया और निकलना चाह, लेकिन निकल ना सकी तो थूक दिया। क्या इंसान दुश्मनी में अल्लाह अकबर इस हद से बढ़ सकता है? कटे हुए कानों और नाकों का पाजेब और हार बनाया। अल्लाह अकबर, सोचिए तो दिल को कुछ होता है ना। अब देखिए, ना तो इस जंग में जीत हुई ना हार हुई। जितनी बड़ी फतह हो सकती थी वो नहीं हो सकी। दो वाक़यात ऐसे आए जंग के आखिर में कि जिसको देखने से लगता है कि बाकी मुसलमान कितने जंगजू थे और किस तरह लड़ने के लिए तैयार थे और अल्लाह की राह में जान देने का कितना वलवला था। एक वाक़या काब बिन मालिक बयान करते हैं कि मैं इन मुसलमानों में से था जो घाटी से बाहर आए। मैंने देखा कि मुशरिकीन के हाथों मुसलमान शहदा का मसला किया जा रहा है, तो रुक गया। फिर आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि एक मुशरिक जो भारी भरकम ज़रा में मलबूस था शहदा के दरमियान से गुजर रहा है और कहता जा रहा है, ओ कटी हुई बकरियों की तरह ढेर हो गए हो, यानी मजाक उड़ाने लगा। और एक मुसलमान उसकी राह तक रहा है, वो भी ज़रा पहने हुए। मैं चंद कदम और बढ़कर इसके पीछे हो लिया, फिर खड़े होकर आंखों ही आंखों में मुस्लिम और काफिर को तोलने लगा। महसूस हुआ कि काफिर अपने डेल डोल और साजो सामान दोनों लिहाज से बेहतर है। अब मैं दोनों का इंतज़ार करने लगा, यहाँ तक कि दोनों में टक्कर हो गई और मुसलमान ने काफिर को ऐसी तलवार मारी कि वो पाँव तक काटती चली गई और वो मुशरिक दो टुकड़ों में बट गया। फिर मुसलमानों ने अपना चेहरा खोला और कहा, ओ काब कैसी रही, मैं अबू दुजाना हूँ। कैसे कैसे वाक़यात हो जाते थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि नामुमकिनात मुमकिनात में बदल जाती थी ऐसे मौक़ों पे। इसी तरह जंग के खात्मे पे कुछ मोमिन औरतें मैदान जिहाद में आईं। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा उम्मे सुलैम को देखा कि पिंडली की पाजेब तक कपड़े चढ़ाए पेट पर पानी के मशकीज़े ला रही थी और ज़ख्मियों के मुंह में उंडेल रही थी। हज़रत उमर कहते हैं कि उहद के रोज़ उम्मे सुलैत हमारे लिए मशकीज़े भर भर कर ला रही थी। इन्हीं औरतों में उम्मे ऐमन भी थी, आपको मालूम होगा ये कौन थी। बनो अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान की ख़ानदानी लौंडी थी, पुरानी जैसे आप कह सकते हैं लौंडी। और नबी सल्लम को बचपन में इन्होंने भी देखा भाला। जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ तो यही आपके पास थी उस वक्त। जब इन्होंने देखा कि मुसलमान शिकस्त खा चुके और मदीना में जाना चाहते हैं तो इनके ऊपर मिट्टी फेंकने लगी, कहने लगी, सूत कातने का तकला निकालो और हमें तलवार दो, यानी तुम औरतों वाले काम करो, हम मर्दों वाले काम करेंगी। और इसके बाद तेज़ी से जंग मैदान जंग में पहुंची और ज़ख्मियों को पानी पिलाने लगी। इन पर हैबान बिन उरका ने या इरका ने तीर चलाया, गिर पड़ी, पर्दा खुल गया। इस पर अल्लाह के इस दुश्मन ने कहकहा लगाए, अल्लाह के नबी को ये बात बुरी लगी। आपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास को एक तीर दिया और कहा, इसे चलाओ। हज़रत साद ने वो तीर चलाया तो हैबान के हलक में लगा और वो गिरा और उसका भी पर्दा खुल गया। इस पर अल्लाह के नबी हंसे कि आपके दांत दिखाई दिए। फरमाए, साथ ने उम्मे ऐमन का बदला चुका लिया, अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमाए। हमें ज़्यादा बातें समझ नहीं आएंगी यहाँ बैठकर, इसके लिए ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है जहाँ वो थे। कोई अपने तसव्वुर को बहुत ज़्यादा तेज़ कर ले तो हो सकता है कि वो इन बातों को समझे, वरना हमें तो समझ नहीं आती ये बातें। क्या जज्बे थे, क्या जोश था। आज की जंगें कल की जंगों से बिल्कुल फ़र्क थी। आज तो आप ख़ुद बख्तर बंद गाड़ियों में बैठे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, आप ऐसी बिल्डिंग्स में जहाँ धमाका नहीं हो सकता और बेगुनाह शहरियों को मरवाते हैं। उस दौर में जो मैदान जंग में जाता था वही लड़ता था और फिर उसको बाकी लोग देखते थे, वो बहादुर लोग थे। आज बुजदिलों की जंगें हैं, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اسلام کے چہرے پر جو آج گرد پڑی اس کو اڑا سکیں۔ یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ آپ کو آج اپنی موجودہ زندگی یا حالات کے مطابق سمجھنا ہے تو بالکل کوئی بدگمان نہ ہو کہ کیوں لڑتے تھے، ہائے یہ تھا وہ تھا، ہم نہیں جانتے ان کے حالات۔ اور اگر یاد رکھیے، مسلمان ان جنگوں میں یہ کچھ نہ کرتے، کفار کھا چکے ہوتے مسلمانوں کو۔ یہ اللہ کے نبی کی اسٹریٹجیز تھی کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جو ڈرائے اس کو اور ڈراؤ، جو چھیڑے اس کو اور بالکل نہ چھوڑو۔ یہی مزاج تھا، تو اسی لیے دشمن کبھی بھی آپ کے اوپر جرت نہ کر سکے۔ ایسے لوگوں کا پھر روب تھا دلوں میں، اور آج وہ روب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل کر دے۔